प्रभुपाद जी कह रहे हैं
कभी काल में हमारे ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य जी मध्वाचार्य जी अकस्मत आनंद तीर्थ व्यासा सत्संग गणे सप्तधाम स्थान लाभ किया मैंने मध्वाचार्य मध्वाचार्य के परंपरा में श्रीमद लक्ष्मीपति तीर्थ। अब ये लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य है माधवेन्द्र त्रिपाठी प्रभुपाद जी का ये कथन। लक्ष्मीपाद के शिष्य थे माधवेन्द्र त्रिपाठी, यही थे एक शाखा निकल मध्वाचार्य। वो सब लोग जितने हैं उनकी उपाधि होती है तीर्थ, और ये उनका हुआ पूरी। तो ये कैसे हुआ, शिष्य हैं मध्य संप्रदाय के वो लक्ष्मीपति के, किंतु उत्तराधी मठ में गया में उत्तराधी मठ है उसका हेडक्वार्टर वहां उत्तर भारत, तो वहां पर सन्यासी लोग सन्यास ग्रहण करते, किंतु उन्होंने इनको दिया नहीं संन्यास किसी कारण से। या हो सकता है कि अप्रकट हो गए हों, पहले शिष्य थे अप्रकट हो गए हों, या किसी कारण से नहीं, तो इन्होंने संन्यास दिया उस समय में पार्टी में कोई संस्कृत संप्रदाय के आचार्य थे उनसे हुए। जैसे महाप्रभु जी ने नवदीप के पास में कठवा में जैसा भारतीय माधवेन्द्रपुरी उन्होंने मध्वाचार्य ने भी दे दिया था वो भी मायावादी थे, तो इसलिए इसे कोई विशेष उस समय इस पर विचार नहीं होगा, संन्यास भेद के लिए इसलिए उन्होंने लिया। तो वहीं से दो शाखा हुई, माधवेन्द्रपुरी जी ने जिस सन्यासी से दिया था वो पूरी थे, इसलिए यहाँ से ये पूरी शाखा थे ईश्वरपुरी बात। अब किससे लिया, तो वहीं से ईश्वरपुरी माधवेन्द्रपुरी ईश्वरपुरी और उनके हजारों शिष्य सब सन्यासी भी थे जब वो सब लोग पूरी, उसी में चैतन्य महाप्रभु जी ने ईश्वरपुरी। यद्यपि पंचोपासक मायावादी अद्वैतवादी जितने होते हैं पंचोपासक हो, पंचोपासक ईश्वरपासक एक ही तत्व के पांच मूर्तियां होती हैं, वो मूल तत्व निराकार है और उसकी पांच मूर्तियां कल्पना पर साधकानंदिता काय ब्रह्म एक है शक्ति, एक है सूर्य से सौर्य, एक विष्णु से वैष्णव, शिव से शैव और गणपति से गणपति माने गणेश उससे गणपति, ये पांच। जब उनकी सिद्धि हो जाएगी चित्त शुद्ध हो जाएगा तो इनकी मूर्ति पूजा छोड़ दिया जाए और निराकार की उपासना करके ब्रह्म में लीन हो जाए, इनको कहते हैं पंचोपासक। वो लोग अधिकांश शिव जी की पूजा करते हैं, शिव को ही परम तत्व मान लेते हैं, इसलिए वो करते सही है किंतु सजो नहीं चाहता कि अपने को अद्वैतवादी मायावादी इत्यादि करते। शंकर ने भी त्रिपुट धारण किया था हाथों में यहाँ दादर संघ और शंकर की उपासना करते, केदारनाथ उन्हीं की स्थापना है, यद्यपि उसके पहले से भी है किंतु पीछे में वो बद्रीनारायण जी और वो भी लुप्त हो गए थे, फिर से उन्होंने स्थापना करके वहां से आरंभ किया। श्रृंगेरी मठ दक्षिण में, उत्तर में बद्रीनारायण उसी का जोशी मठ है, और एक गोवर्धन में पूरी में गोवर्धन व्रत और द्वारका में ये चार उन्होंने किए और उनमें किसी आषाढ़ी पूर्णिमा को ही गुरु पूजा होती है। आषाढ़ी पूर्णिमा किस लिए वो भी कहते हैं कि मैं व्यास का शिष्य हूँ और व्यास जी का जन्म आषाढ़ी पूर्णिमा को है जो कि मथुरा में उनका जन्म हुआ था
कृष्ण गंगा
घाट पर। यद्यपि व्यास पूजा वो लोग भी करते हैं और बड़ी प्रबल रूप से करते हैं क्योंकि ये सब पुस्तकें हैं जिसमें कृष्ण के साथ में संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध इत्यादि सभी की पूजा करते हैं। वास्तविक संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध की मायावादी संप्रदाय में आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन में व्यास पूजा होती है। श्रुतियां ने कहा है ऐसा श्रुति में कहा गया प्रभुपाद जी कहते हैं जिस मुहूर्त में जीव को वैराग्य उत्पन्न हो गया संसार से वैराग्य हो गया क्या संसारिक जितने भी वस्तुएं हैं समस्त भोगों की वस्तुएं मिल जाने पर भी किसी को सुख और शांति नहीं हो सकती है इसलिए उन भोगों के प्रति वैराग्य हो जाने पर जड़ जगत के भोगों से वो विराम लाभ कर देता है मैंने उनको छोड़ त्याग कर देता है और भगवत सेवा की रुचि उसमें उत्पन्न होती है मैं भगवान की सेवा करूंगा और उससे उसमें काल और अकाल का विचार नहीं कब लूंगा कौन तिथि को हरिनाम गुरु जी से या मंत्र लेकर के भगवान का भजन करूंगा। जड़ भोगों से निवृत्त होना ही स्प्रिया होना ही इसी का नाम संन्यास। संन्यासी तो कहते हैं जड़ भोगों से विरक्त होकर के अब इसे हमारा कोई प्रयोजन नहीं चाहे स्त्री हो पुरुष हो ब्रह्मचारी हो कोई भी व्यक्ति हो जाएंगे वैराग्य हो गया बस वो परिवराज हो वो संन्यास देश से नहीं देश हो सकता है नहीं भी हो सकता है इसलिए रूप सनातन इत्यादि जितने हैं हमारे वैष्णव आचार्य सब सन्यासी परिवर्तन है। इसमें आचार्यों का चरणाक्षर करना ही का नाम नामांतर में व्यास पूजा है गुरु जी का चरणाक्षर करना ही व्यास पूजा चारों आश्रमों में ही किया जा सकता है होने पर भी सूर्यास्त माने संन्यास या पर परिपराजक की अवस्था है इसमें अधिक विधान पूर्वक होती है सन्यासियों में आज्ञाव्रत में व्यास जी के अनुगत संप्रदाय जितने भी व्यक्ति हैं वो वेदानुग या व्यासानुग कहलाते हैं वो प्रत्येक ही प्रतिवर्ष में अपने अपने जन्मदिन अपने जन्मदिन में पूर्व गुरु की पूजा करते हैं अपने अपने जन्म के दिन में क्या करते हैं पूर्व अपने गुरु जो है उनके उनकी गुरु उनके गुरु अपने गुरु की इस तरह से ये किया इसी को व्यास पूजा भी करते हैं। व्यास पूजा का नामांतर गुरु पाद पद्म की पूजा या व्यास पूजा या गुरु पूजा है। इसीलिए कह रहे हैं हम लोग के सुखानुध्यायी अतः कुल मंगल चाहने वाले नियामक श्री नरोत्तम ठाकुर रूपानुग रूप में आदि गुरु को अर्घ प्रदान के उद्देश्य से कहा है श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम सदा की सपदांतिकम। ये व्यास पूजा कर रहे हैं अपने गुरु जी की। पिछले पूजा चैतन्य मनोभीष्ट को स्थापन करने वाले जो रूप गोस्वामी है, रूप गोस्वामी की पूजा करने से ही व्यास की सर्वोत्तम व्यास पूजा होगी। क्यों? श्रीमद भागवत इत्यादि को प्रकाश करने वाले जो वेद व्यास जी हैं, उनका मनोभीष्ट क्या है जिसको रूप गोस्वामी ने प्रकाश किया? गोपियों की सर्वश्रेष्ठ महिमा का इन्होंने प्रकाश किया। इसलिए रूप गोस्वामी की यदि पूजा होती है तो व्यास जी की भी पूजा होती है। इसी के द्वारा इस तरह से इन्होंने व्यास पूजा की व्याख्या। अब दो रूप में चल रहा है, एक तो आषाढ़ी पूर्णिमा जिस दिन व्यास जी का जन्मतिथि माना जाता है, ये पूर्व से ही ऐसा महाप्रभु जी के जन्म से भी पहले जितने संप्रदाय हैं, मत्स्य संप्रदाय इत्यादि अथवा रामानुज संप्रदाय, विष्णु स्वामी लिंबादी इत्यादि संप्रदाय में, शंकर संप्रदाय में भी, कर्मियों में भी उसी दिन पहले से ये प्रथा चली आ रही। और उसी दिन अकस्मा हमारे सनातन गोस्वामी जी का विरोधा हो, इसलिए दोनों चीजें मिलकर के अब वहां पर गोवर्धन की पूजा होती है और व्यास पूजा भी। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक और भी बतलाया, जो आचार्य वर्तमान में व्यास जी की गद्दी पर बैठ करके कृष्ण का की महिमा का प्रचार कर रहा है, जो गुरुदेव शुद्ध गुरुदेव, वो अपने अपने जन्मदिन में अपने जो पूर्व गुरु हैं उनकी पूजा करेगा, ऐसी भी बात हमारे संप्रदाय में वही चली आ गई। गुरु अपने जन्म के दिन में अपने गुरु और गुरु वर्गों की पूजा करें, जैसे कि हम लोगों ने देखा है गुरु जी के लिए, गुरु जी को देता है और अपने और भी गुरुवर्गों को हम लोगों ने देखा है। अपने जन्मदिन में सबसे पहले अपने गुरुदेव की पूजा करके और पूरी गुरु परंपरा का, क्यों गुरु परंपरा की पूजा किस लिए? उसी परंपरा की धारा से हम लोगों को जो कुछ मिल रहा है उन्हीं की धारा से मिलना है, इससे सबकी पूजा। ये धारा आरंभ होगी कहां से? कृष्ण से आरंभ होगी। यहाँ पर एक दिन पहले, जैसे आज कल व्यास पूजा है, एक दिन पहले हमारे ये कह रहे हैं महाप्रभु जी हाथे प्रभु नित्यानंद चारी जी के देखिए भय आनंद धारा सबक आती, देखिए आनंद महाप्रभु निरम दिसंबर नित्यानंद प्रति कुछ बोली है बोले नित्यानंद रूप से लेकर के कह रहे हैं सुनो सुनो नित्यानंद श्रीपाद गोसाई और श्रीपाद गोसाई नित्यानंद प्रभु जी व्यास पूजा कुमार हरिदे कौन था? कल तो व्यास पूजा है, काली हरिदे पौर्णमासी पौर्णमासी व्यास रखूंगा, मानी यही आषाढ़ पूर्णिमा के लिए बताए कल आने वाली है, कल होगी पूर्णिमा आषाढ़ी पूर्णिमा। आपने बुद्धिया बोलो जान रहे कौन व्यास की पूजा किस प्रकार से पूजा की जाएगी और कहाँ होगी? ये व्यास पूजा ये आषाढ़ी पूर्णिमा को इसमें उल्लेख कर रहे हैं और जितनी भी पद्धतियां हैं जो गुरु जी ने भी प्रकाश किया है उतना आषाढ़ी पूर्णिमा का ही विवरण है। तो उस दिन व्यास जी का आविर्भाव तिथि कहा जाता है। ये व्यास का आविर्भाव कैसे हुआ, व्यास जी कैसे प्रकट हुआ? पृथ्वी से वेद शास्त्र इत्यादि युक्त हो रहे थे, द्वापर युग के अंत तक लोगों ने वेदों को वेद के उपदेशों को धारण करने की क्षमता नहीं रह गई, न तो वैसा ब्रह्मचर्य रहा न तो वैसी शक्ति रही, न वैसी आभवा रही, न खान पान रहा जिसको वो धारण कर सके। पहले के लोग पूरा वेद 1800 उपनिषद सब मुखस्थ रखते, चारों वेद इत्यादि सभी। पहले वेद एक ही था, उसका नाम था अथर्व वेद, और उसको पूरा याद रखना, अनंत है ये, और उसको याद रखते थे ब्रह्मचारी लोग। किंतु कालांतर में जैसे जैसे सब चीज चला गया, त्रेता आया, द्वापर तक सबकी धारणा छिन्न हो गई। अब तो ये स्थिति है, जैसे किसी का नाम ही याद नहीं रखता, कभी तुम्हारा नाम बोलो तो ये जरा उठा जाओ हम लिख लें, और लिखने में भी चार पांच बार सीखना पड़ता है, तो याद क्या करें। हमने अपने जीवन में देखा है जैसे गीता और रामायण पर कितने लोगों को आर्थिक मुखर जग 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 बोलते 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 गीता एकदम पूरा आरंभ किया और खत्म कर दिया, बहुत से लोग सूचीधर हुआ करते, सुना उनको याद हो, अब वो सब धारणाएं सब समाप्त हो। तो द्वापर जी के अंत में इन चीजों को धारण करने वाले बहुत कम रह गए, तो व्यास ने वेदों का चार निभा करके अपने चार शिष्यों को उसमें कहा, जैसे तुम इतना ही याद रखो, तुम इतना ही याद रखो, तुम इतना ही। उसमें भी प्रधान था, और यज्ञ वाली जो विधियां हैं, और इसका सत्य ब्रह्म जो उपनिषद हैं, इनकी तो बात अलग रहे। चार ऋषियों को उन्होंने चार प्रकार के वेदों का ये सब दिया, और जो श्रुतियां हैं ऐसा ये छांदोग्य और सब ये तो सब अलग मिला, इसलिए कोई धर्म सब में समर्थ नहीं था, इसलिए इनको अलग से किया और अलग अलग चीजों को दिया। क्यों दिया? मरण शक्ति नहीं रही, इसलिए इसके बाद में व्यास जी का आविर्भाव कैसे हुआ? जब देखा कि धारणा शक्ति नहीं रह गई, तो उन सब लोगों ने मिलकर के ब्रह्मा जी ने देखा कि वेद सब लुप्त होते जा रहे हैं, इन्होंने भगवान से प्रार्थना की, आराधना की भगवान की, आराधना की, नारायण की आराधना की, उनकी आराधना से वो प्रसन्न हुए, बोले जिससे मैं खुद ही आऊंगा, दूसरा ऐसा कोई नहीं है जो वेद उपनिषदों को सब कुछ याद रख सके, इधर मुझको ही आना पड़ेगा। व्यासो नारायण,
नारायण
स्वयं के लिए
श्री नारायण, व्यासो विद्धि नारायणम प्रभु,
शंकर जी शंकर है,
निन्न का नाम दिखा तंत्र
शंकर शंकर व्यासो नारायण तथा शंकर जी कौन है? ये शंकराचार्य, ये शंकर है, इसलिए उनकी मेधा कितनी है, शंकर है ना, वो चारों युगों से पहले के हैं,
पर अभी के शंकराचार्य नहीं है।
हाँ
नहीं नहीं, ये शंकराचार्य नहीं, वो आदि शंकराचार्य जो है
उन्हीं के अवतार है ना, इसलिए
मैंने आदि शंकराचार्य, अभी जो वर्तमान में जो शंकराचार्य,
अरे हम उनकी बात कर रहे हैं, उनको अभी काम कर रहे हैं, उन हम शंकराचार्य की बात कर रहे हैं, कौन सा आदि शंकराचार्य, वो शंकर कक्षा, वो शंकर, इसे उनकी स्मृति शक्ति कितनी है, नहीं को हाँ कर दिया, जो नहीं है उसको भी हाँ कर दिया, जो हाँ है उसको भी नकार दिया, और वेद दीर्घ मत वेदों के ऊपर भी प्रतिष्ठित किया, जो ये वेद का मत है और वेद दीर्घ होता है, ये उन्हीं के लिए संभव। व्यास जी साक्षात नारायण, इसलिए इन्होंने वेद का विभाग किया, उपनिषदों को प्रकाश किया, इसके अतिरिक्त वेदांत सूत्र किया, उससे भी मन नहीं भरा, 18 पुराणों को रचना की, उसमें भागवत भी संक्षिप्त रूप में पहले था और उसके बाद में उनसे भी नहीं मन भरा, तब उन्होंने अंत में भागवत की जो कि और कहीं नहीं है, वेदों में नहीं है, जो विषय उपनिषद का भी विषय नहीं है। कुछ नारद जी को भी प्रसन्नता नहीं हुई, व्यास जी को प्रसन्नता नहीं। नारद जी की कृपा से मानो दिखला रहे हैं नारायण, नारायण जी हो रहे हैं शिष्य नारद जी। इसलिए इसलिए हो रहे हैं, यदि चैतन्य महाप्रभु रामानंद के शिष्य हो सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी याद से किसी का उनसे सीखा। उसी तरह से यह नारायण होकर के भी कुछ चीजें हैं, तो इसलिए नारायण के लिए भी बहुत सी चीजें हैं जो सीखने के लिए है। बाकी जब कृष्ण के लिए सीखना बाकी रह गया, महाप्रभु के रूप में आए कुछ सीखने के लिए, तो इनके लिए भी कुछ सीखने की बात। इसलिए उन्होंने नारद जी से सीखा और भक्ति योग के द्वारा तो नारद जी को देखे उन्होंने क्या देखा, यही गोपियों की उपासना की बात जो किसी भी वेद में शास्त्र में उपनिषद में नहीं है। नारद जी ने कहा कि तुमने कृष्ण का चरित्र वर्णन किया, कहां वर्णन किया, वर्णन किया शिशु में, वर्णन किया गोपियों की आराधना की बात कहीं लिखा, जहां लिखा है तो कुछ तो कृष्ण ने गोपियों की आराधना की ये लिखा है, तो ये तो मैंने नहीं लिखा। संधान करता है ये तो मैंने लिखा सब जगह, पुराण में भी लिखा, महाभारत में भी लिखा। भक्त लोग सब भगवान की आराधना करते हैं और उनको खोजते हैं, आपने ये लिखा कि भगवान भक्त की आराधना करते हैं उनको ढूंढते हैं, ये कहीं लिखा है, तो ये तो मैंने लिखा। तो इन्होंने कहा कि कहाँ है ये ऐसी बात, कहा जो देखो समाधि लगाओ भक्ति के द्वारा तुम समझेगा कृष्ण की लीलाएं जो है कहां की गोलोक वृंदावन में, वो तुम्हारे हृदय में स्फूर्ति होंगी तब समझेगा। इसीलिए उन्होंने भक्ति योगी ने मन की संगत पंडित अमले अपचुर संपूर्ण मायान से जगह पाप, तब उन्होंने भक्ति योग के द्वारा चित्त को लगाया भगवान ने और कृष्ण की लीलाएं उनकी कृपा से उनके हृदय में सब स्फूर्ति हुई, इसलिए उसको समाधि भाषा करते हैं। उसका उन्होंने क्या किया, इसके पहले अभी अक्षर लिखे नहीं जाते थे, सू नहीं जाते थे, इसलिए इसका नाम था सूखी। व्यास जी ने पहले अक्षर आरंभ किया, अक्षरात्मक थे वहीं से आरंभ हुआ। ये कलयुग के पहले थोड़ा सा द्वापर के अंत में अक्षरों की स्थिति की और तभी लिखना आरंभ हुआ। अब तो लेखन शक्ति लेखन का कार्य बहुत अधिक बस सुन करके, जैसे अभी हम सुना रहे हैं सुन करके सभी वेदों को धारण करते थे और उनको याद करते थे। बहुत सी महिलाएं हैं जो गाना एकदम नहीं जानती हैं, याद नहीं है, और सुनते सुनते उनको पूरा याद। किसी स्कूल में पढ़ाया जाता है सुनाया जाता है उनकी धारणा इतनी तेज थी सूतिधर। माँ प्रभु भी सूतिधर थे, तब उन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रकाश किया जिसका जस्या वही सूर्यमाणा कृष्ण परम पूजे भक्ति सुंदर शोक मोह भयावह। अधिकांश चीजें किसी से सीखने से होती है, लोभ से होता है, पढ़ना लिखना से पढ़ाता आजकल और कुछ अनुकूलता होती है, किंतु पूरी अनुकूलता नहीं होगी। बच्चा जन्म से ही अपनी मैया का स्तन पीता है, ये कहाँ सिखलाया जाता है, कहीं है पूर्व जन्म से ही भोग की प्रवृत्ति है, इस जन्म में अपने आप प्यार करना, दोस्तों से क्रोध करना, ये सब अपने आप ने पहले अक्षर आत्मा वेद का प्रचलन कर रहे हैं। तो ये उनका जन्म यही पर हुआ, एक दिन पराशर ऋषि जा रहे थे, उन भगवान ने तब उनको दे दिया पर देवताओं को ब्रह्म इत्यादि का। अब वो आने की साथ में से ये कैसे ही जगत में पहुंचे, साधारण रूप में तो होंगे नहीं, इसलिए एक दिन पराशर ऋषि भक्ति के आचार्य हैं वो मथुरा आए थे, अब लौट रहे थे अपने आश्रम में और शाम ऐसे ही समय हो गई, आंधी और तूफान की स्थिति आई और जल भरा हुआ था, पार करने जा रहे थे तो देखा कि नौका सब बंद करके मल्ला ही घर में आ गया, इसलिए उसके घर में गए, लेकिन हमको जरा पार कर दो, तो मैं तो अक्सर करके चूक हो गया, मैं जा नहीं सकता। उनकी एक बेटी थी, वो भी बेटी कैसी मिली हुई थी, कैसे मिली,
मछली के
वो मछली के पेट से मिली थी, उसका नाम ही था मत्स्यगंधा, किसी अस्परा की लड़की थी, बड़ी सुंदरी अस्परा, और मछली के पेट से होने से मछली का गंध, इसलिए उसका नाम था मत्स्यगंधा, इसलिए गिरफड़ा वो और मछली ने टपक करके गीत खा लिया और उसके गर्भ से ये तो वो अपनी लड़की को कहा इसको पार कर दो, तो वो पार करने के लिए चली पिताजी का आदेश लेकर, अभी 12-13 वर्ष की सुकुमार लड़की थी, तो जब उनको नौका में लेकर के पार कर रही थी तो एक टापू जैसा आया, उस टापू में जाते ही ऋषि ने उनके तरफ में देखा, क्यों देखा, वही भगवान की प्रेरणा, और देखते ही उसको साथ ही साथ में गर्भ हुआ, इसके बाद में गर्भ का गर्भ निकल गया और वो बच्चा 16 वर्ष जैसा लंबा चौड़ा मोटा पराशर जैसा ही, देखते ही लड़की बड़ी लज्जित थी, अरे ओहो हमारा ये क्या हो गया, मैं तुम्हारा कुछ नहीं, तुम लड़की की लड़की रहेगी और तुम्हारा विवाह भी बड़े ठाट से होगा और साधारण लोगों से नहीं होगा, बड़े श्रेष्ठ राजा के साथ में होगा, घुमंडल का एक नरपति प्रधान, और तुम्हारे लड़के भी वैसे होंगे, और तुम्हारा ये जो लड़का पैदा हुआ ये कौन है, साक्षात नारायण है, वो लड़का ही हाथ जोड़ करके बोले मैया तेरे लिए मैं क्या करूं, अब तो मैं जा रहा हूं संन्यास लेकर के साथ ही साथ, और बहुत से काम मुझे करने हैं, तो तेरे लिए क्या सेवा करूं, पर ये अब तो तू मेरा पुत्र जब है, जब हमको जरूरत होगी उस समय तुमको बुलाऊंगी और उस समय आकर के हमारा वो मनोभिलाषा तुम पूर्ण कर दे, ये करके ब्यास जी चले गए, कहां चले गए, ब्रज में, और ब्रज में जाकर के बकरीबन में, बकरीबन कहां है,
पूछवा करते करते
वृंदावन की परिक्रमा में जमुना के किनारे एक बद्रीवन मुख्य है और एक बद्रीवन है केदार बद्री, जहाँ पर कि वृंदावन के अंतर्गत है, वो नहीं इस वृंदावन में, वहाँ पर है, तो इस बद्री में जाकर के तपस्या की आराधना की, किसकी आराधना की होगी, गोपियों जैसी भक्ति के लिए किसकी आराधना होगी, गोपियों की आराधना होगी या अभी सभी पूर्णिमा देवी की हो, इनकी आराधना करने से बस इन सबको को सहज रूप में देखा और उसी को उन्होंने ग्रंथ के रूप में लिखा, यही समस्त वेदों से भी परिषदों से भी समस्त स्थितियों से भी महाभारत और रामायण सबसे श्रेष्ठ यही मूल प्रमाण के रूप में श्रीमद भागवत, इतने गोपियों की आराधना की सभी बातें चली गई, व्यास जी ने प्रकट किया, इसलिए समस्त विश्व व्यास जी का ऋणी है, इसे उनके जन्म के दिन में व्यास जी की हम लोग व्यास पूजा दो प्रकार से होगी, एक होगी व्यास जी की प्रतिमा हो व्यास जी की पूजा हो, और एक होगी किस रूप में अपने गुरु के अंदर से पूजा होगी, गुरु व्यास को सबसे अधिक सेवा करने वाले हैं गुरु, तो वो गुरु के हृदय में व्यास जी हैं और सर्वोत्तम रूप में, इसलिए अपने गुरु की पूजा भी इसे बैठ पूजा के दिन में हम लोग अपने गुरु पर प्राची गुरु वर्गों की अपने गुरु की पूजा करके और सब हम करेंगे। ये व्यास पूजा सनातन गोस्वामी हमारी गुरु परंपरा में है। वो बंगाल के कुशल शाह के प्रधानमंत्री थे। संसार से वैभवों से उनकी विरक्ति हो गई। उस मंत्री पद को राजा के कहने पर भी बार बार उसको पैनल से ठुकरा दिया। जेल में जाना मंजूर किया किंतु उसकी बात को नहीं माने। अंत में भाई किसकी लड़की है
भूषण साहब के प्रधानमंत्री से भूषण साहब के प्रधानमंत्री से
अब उसको छोड़ करके आए प्रयाग के इलाहाबाद में सनातन गोस्वामी से काशी में सनातन गोस्वामी से महाप्रभु जी की भेंट थी। उन्होंने समस्त शिक्षाओं का सार उनको दिया और उनको वृंदावन में भेजा। अपने चले गए जगन्नाथपुरी। वहां जाकर के कुछ दिनों के बाद में फिर वो महाप्रभु से भेंट करने के लिए वहां गए। बाकी शिक्षाएं सब ग्रहण इसका दल महाप्रभु ने रूप सनातन और उनके वंश के सबको भेज दिया वृंदावन में। ये लोग वृंदावन या रूप सनातन रहते थे। कैसे रहते थे? पुराने घुराने कपड़े, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, और 24 घंटे में कभी 8 घंटा सो लिया नहीं तो वो भी नहीं, कीर्तन करते रहते थे और ग्रंथ लिखते थे। वो भी ग्रंथ इस लाइट से नहीं, प्रदीप से नहीं, पत्तों को जला करके रात में दिखा रहे। एक एक वृक्ष के नीचे एक एक रात रहते थे। और कैसे रहते थे? कभी राधा कुंड में, कभी गोवर्धन में, कभी नंदगांव, कभी बरसाना में, कभी काम्यवन में रहते और रोते रहते, आंखों से आंखों की धारा गिरती रहती। हे राधे बजदेव के महाभीवन होकर के रो करके हाथों को उठा करके हे राधे हे लक्ष्मी उनका हे कृष्ण। और एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन निवास करते और कितने ग्रंथों को प्रकार से उन्होंने किया है, भक्ति की महिमा उन्होंने देखा है। और ऐसे ऐसे सुंदर वही सनातन गोस्वामी जब वृद्ध हो गए तो चल फिर नहीं पाते थे। उस समय भी गोवर्धन की परिक्रमा करते थे। विशेष करके उनका वृद्ध होना मैंने क्या, महाप्रभु के विरह में थोड़ी सी उम्र में, थोड़ी सी उम्र मैंने वो भी 60-70 या कुछ होगी, उस उम्र में भी चल पाते नहीं थे। वो गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव जहाँ है वहीं पर आते थे, मानसी गंगा के तट पर, जहाँ पर की गोपी घट है। गोपी घट माने गोपियों का घाट, जहाँ पर किसी से नौका से पार करते थे, लीलाओं की स्फूर्ति के लिए वहीं रहते थे। एक दिन परिक्रमा करते करते दोपहर में मूर्छित होकर के गिर पड़े। तेज धूप थी पहाड़ी के ऊपर में, पर उसी समय में कृष्ण और बलदेव दोनों भैया आए और उन्होंने बलदेव जी ने अपने चादर को उनके ऊपर में छाया कर दी और कृष्ण ने उनके मस्तक को अपनी गोदी में ले लिया और कोमल हाथों से स्पर्श करने लगे। कोमल हाथों का स्पर्श पा करके और मधुर आह्वान से सुन करके एकदम विवल हो गए। आंख खोला बेटा कृष्ण और बलदेव। कृष्ण बलदेव ने कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, वृद्ध अवस्था में चल नहीं पाते, फिर हमें और क्षीण हो गए हो, खाते पीते कुछ नहीं, तुम एक बात करो, गोवर्धन की परिक्रमा तुम्हारी बहुत हो गई, अब रहने दो, कहीं हमारे जीवन का व्रत है अंतिम सांस तक हम उनकी परिक्रमा करेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा जब ऐसी है तो मैं अपने चरणों से संलग्न एक गोवर्धन की शिला दे देता हूं, उसमें हमारे चरण का छाप पाएगा दाहिने चरण और उसमें हमारी मुरली भी लगा देते हैं और उसमें गैया का सुर रहेगा, गैयों के पीछे पीछे चलता और ये ले जाओ। ये कहकर के एक शिला उठाया और जहन स्वयं शिला चल गई चरणों का छाप चिन्हों के समय से उसमें आया और गैया का सुर भी उगाया, अपनी बंसी का तीर्था भी छाप आया, इतना बड़ा वो है देकर के आया। इसी की परिक्रमा कर लेना, जहाँ भी रहेगा परिक्रमा हो जाएगा। उसी को लेकर के वो अंत में वहां से आए वृंदावन में और अपने पास रखकर के रोज परिक्रमा करते थे। अंतिम समय हुआ तो उन्होंने रूप गोस्वामी को दे दिया, रूप गोस्वामी ने उसको जीव गोस्वामी को दे दिया, जीव गोस्वामी ने राधा दामोदर में उसकी परिक्रमा करने से ही गोवर्धन की परिक्रमा का फल मिल जाता है। ऐसे सनातन गोस्वामी भगवान के परिकर थे। ये भी सनातन गोस्वामी की महिमा बहुत थोड़ी है, कृष्ण उनके प्रतिभूत हैं, कृष्ण की लीला में उनका नाम है
लवमंजरी,
उनकी सब प्रकार से सेवा करते हैं। इसलिए सनातन गोस्वामी दासी भाव के दिन में सब लोग वहां पर मस्तक मंडन करके और उनकी परिक्रमा करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, जो उनकी कृपा में है। तो जो लोग परिक्रमा करेंगे उस दिन सबकी मनोकामना को पूर्ण कर, जो जैसा यदि पेड़ों को पेड़ों की डालियों में बांध दिया तो उनकी लड़की का या उनकी शादी हो जाएगी, और यदि एक एक पत्थर के ऊपर में दूसरा पत्थर, तीसरा, चौथा, सातवां रखा तो मकान इतना बड़ा बन जाएगा, जो चाहोगे वही हो जाएगा। किंतु ये सब मत चाहना, सनातन गोस्वामी जो चाहते हैं वही चाहना, क्योंकि और गोस्वामी ने जो शिक्षा दिया उनकी भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहे। कृष्ण पूछा कि भक्ति तो बहुत प्रकार की होती है, कौन सी चाहता है? हमें ब्रजवासियों ने जैसी चाहता रहता है, तो ब्रजवासी तो बहुत हैं, वो कहेंगे कि गोपियों जैसी भक्ति, तो गोपियां भी तो बहुत हैं। इस तरह से अंत में लेकर के राधा पदासी, यही सबसे प्रार्थना भी है, यही करेंगे। आज बहुत देर हो गई, अभी आरती होगी, आरती के बाद में फिर आज यही तक पंचा
ভরা সব আছে এবং বারোটা তো নেই মাত্র, কেননা শিকার কি জানি।